का लक्षण शास्त्र बता रहा है, शास्त्र हम देखते हैं क्या शास्त्र परिचित स्नातन कैसे समस्त शास्त्र में पारंगत शिक्षा के अंदर किसी प्रकार की संदेह हो, संशय हो, प्रश्न हो, तुरंत निराकरण कर सकते हैं। दूसरी बात उपसमाधान, जगत के जितने प्रकार के आशा इससे जगत की जो सुख दुख है जो आशा इससे उपलब्ध है, हम जो चाहते हैं, हम जो सुख भोग चाहते हैं, अगर गुरु यही चाहते तो हम तो बड़े कैसे हुए। इसलिए गुरु जी ऐसे भोग में लिप्त नहीं है, जो सदगुरु होते हैं ये जागरूक भोग में लिप्त नहीं जाते और ये तो बाहरी लक्षण बताया गया। आभ्यंतरी लक्षण क्या है बताए, पर ब्रह्म निधि स्नातक भगवत अनुभूति संपन्न, जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं अपने भक्ति के द्वारा, भगवान को अपने हृदय में भंग करके रखा है, वही सदगुरु है। जिसके अंदर ये भगवत अनुभूति नहीं है ये दूसरों को कैसे कर सकते हैं, जो भगवान को दर्शन नहीं किया है वो दूसरे को कैसे करा सकते हैं। इसलिए नारद जी ये समस्त गुण संपन्न है, भगवान के दर्शन कर चुके हैं, इसलिए दूसरे को दे सकते हैं भगवान को। जैसे आप उनके धनी के पास जाइए, उनको उनके पास 1000 डॉलर है, आप 1,00,000 डॉलर जब उनको मांगेंगे कैसे देंगे। ऐसे जो भगवान है, जो भगवान का दर्शन नहीं किया है वो दूसरे का दर्शन नहीं करा सकते, भगवान को दूसरे का हृदय में शिष्य का हृदय में नहीं दे सकते। जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं, भगवत अनुभूति संपन्न
कहना से सभी अनुभूति है,
भगवत अनुभूति संपन्न और ये जो गुण पहले बताया इनमें है वही सदगुरु है। नारद जी के मंत्र प्राप्त करके
नारद जी ने मंत्र उनको दिया,
नारद जी उनको ध्रुवमान जो मंत्र दिया, नारद जी ने मंत्र पढ़ा करके
और उपासना की पद्धति भी बतलाई
और कैसे उपासना किया जाएगा इसका पद्धति बता दिया। नारद जी से मंत्र और उपासना का पद्धति डालकर ध्रुव महाराज जी उपासना करने लगे। 6 महीने में उनको दर्शन मिल गया। पहले तो वो कुछ भजन करते थे, पीछे केवल पेड़ के पत्ते लेते थे, वो भी छोड़कर के दूसरे पत्ते, उसके भी छोड़कर के केवल पानी, उसके बाद 15 दिन में एक बार थाप लेना। इसकी थाप लेना भी जब थाप को भी रोक दिया तो किसी के संपन्न होने लगा, तब भगवान तो रहा नहीं गया, उनके सामने आके प्रकट किए, उनको दर्शन दिया, पहले हृदय प्रकट दिए फिर आंखों के देखा, सामने दर्शन दिया, ये पूर्ण रास्ते देखा। प्रेमा जी का भक्ति की कभी नोचन ही ना हम तो सदैव हृदय की दिलो कयंती चंद श्याम सुंदर वचिन गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामि। कैसे देखा प्रेमा जी का भक्ति की कभी नोचन ही ना इस आंख से नहीं देखा, भजन करते करते उनको जो प्रेम रूपी जो आंखें हैं उनको खुल गई, उस आंख से देखा, इस आंख से भगवान हम दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे प्रेमानंद की तो गुप्त विलोचन ही ना प्रेमानंद की आंख से उनको देखा। इसने ये क्या शिक्षा क्या है कि भगवान का रूप है तभी तो देखा, अगर भगवान का रूप ना होता तो रूप कैसे दर्शन करते। इसलिए भगवान स्वयं रूप है, इसलिए भगवान का नित्य रूप है, उसी रूप को दर्शन किया, दर्शन करके कुछ स्तुति करना चाहा, गुरमुख में कुछ निकल नहीं रहा क्या करें, तब भगवान कृपा करके जो शंकर चक्र गदा पद्म लेके दर्शन दिया था तो शंख के जो स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराते ही जो महाराज की तपस्या कर उनको स्तुति करने लगे। युवक महाराज के मन में इच्छा थी कि मैं पिता के राज्य को कर लूं, भगवान का दर्शन अमोघ है, भगवान ने उनको बताया तुम इस पृथ्वी तल पर 36,000 साल तक ये तुम राज्य को करोगे। तब गुरु महाराज की आंखें खुली, बहो मैं तो भगवान को भजन करने के लिए आया, मेरा मन में ऐसे क्यों था कि मैं राज्य भोग करूं, ये तो ठीक नहीं, ओ मैं तो काज खुलने के लिए आया था, कष्ट का टुकड़ा खुलने के लिए, मुझे चिंतावनी मिल गई, मैं चिंतावनी को छोड़कर के काम में रह गया, ये तो ठीक नहीं। गुरु महाराज हया करने लगे, तब बताया भगवान ने देखो मैं जो कह दिया ये तो होगा ही, 36,000 साल ये राज्य भोगने के उपरांत तुम हमारा सामने को प्राप्त करोगे। ये भगवान ईश्वर जी का एक शिक्षा देते हैं, जो भगवान को भजन करते हैं ये कभी भी सदुपयोग नहीं होते हैं। भगवान को भजन करने वाले इस जगत में चुकी हैं, पर जगत में चुकी हैं। एक समय की बात युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहता हूँ। कृष्ण हस्ते ने कहा, अच्छा क्या वर चाहते हो तुम? बोले हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न न हो, मुझे एक बार दीजिए कि मैं ऐसे सम्राट बनूं जतिजी ने ना हुआ ना होगा, मुझसे बड़ा राजा कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा, और मेरी पत्नी हो वो विश्व सुंदरी हो, एक इतना बड़ी सुंदरी इस मनुष्य धर्म के पास कोई ना हो। भगवान ने कहा यह वस्तु जिसने यह वस्तु कहा करके पूछा हंसते हुए, अच्छा जिंदगी तुम्हें ऐसे बात क्यों मांगा, क्या बात है? ऋषि महाराज जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु जगत के लोग सोचते हैं जो कृष्ण के भजन करने वाले वो भीख मांगने दरिद्र होते हैं, मैं जगत को दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं भगवान कृष्ण का भजन किया, मेरे तमाम धन जगत मेरा कोई हुआ ना होगा, मेरी जो पत्नी द्रौपदी इतनी सुंदरी जगत में कोई नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए जगह आपसे एक बार मांगता हूँ। भगवान ने कहा तथा इससे भाग भक्ति श्लोक है, अकाम सर्व काम मोक्ष का मूलधार भी सिद्धे न भक्ति योगी में जगते पुष्पम परम। आपको कुछ कामना हो ना हो कितने प्रकार की कामना हो सकता है इन्हीं कामना करें, भगवान को भजन करने पर सब कामनाएं पूरा तो हो जाएगी। फिर भी आप भजन के उपरांत भगवत धाम को प्राप्त कर आप करेंगे, और कभी भी ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, अधिक तक आप सुखी शांति उपभोग करते हुए भगवान को भजन करेंगे, और आपको इस जगत के लिए सुख दुख पिता आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भोगी इस ताप जगत नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवत भगवत शास्त्र में शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान को भजन करो तभी सुख शांति मिलेगा, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।
इस प्रकार से जिस गुरु ने भगवत अनुभूति की है ऐसे गुरु जी के उस प्रोसेस को जान करके उस उपासना की पद्धति से, उपासना मैंने क्या उपासना, भगवान के निकट हम भी पहुंच करके उनको देख सकते हैं, उनकी सेवा उसको कहते हैं उपासना। तो जिसकी कभी उपासना नहीं थी, जो आर्थिक त्याग में फंसा रह गया, जो संसारिक कर्म में फंसा रह गया, जिसको भजन करने का संबंध समय नहीं है, जो कि भगवान के 5 मिनट नाम नहीं कर सकते, जो बार बार गिर जाते हैं, ऐसे दूर इसलिए कोई सब कुछ में उपासना करने वाले गुरु हूं और भगवान की कुछ अनुभूति हो तब तो हो सकता है। नारद जी ऐसे गुरु थे, एक को नहीं हजारों लोगों को उन्होंने भगवान का दर्शन किया, और जिसका जैसा है अधिकार में वैसा दिख रहा है, गुरु जी को ऐसा दिख रहा है, प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने शिक्षा दी और उन्होंने कैसा देखा नित्य भगवान का दर्शन, कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं, कैसे दर्शन करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं। क्या वाल्मीकि जी को नारद जी ने नहीं कृपा करके मंत्र दिया और उन्होंने रामचंद्र जी का दर्शन किया, बिना सदगुरु के भाई उपासना पद्धति नहीं आती, मनमाने तरीके से स्कूल में न जाओ पढ़ो तो उसका कोई भी मूल्य नहीं, लॉ पढ़ना है तो लॉ कॉलेज में जाओ जो कि लाखों जानते हैं उनके, बिजनेस पढ़ना चाहते हो तो बिजनेस के कॉलेज में जाओ, यदि वकील बनना चाहते हैं तो वकालत पढ़ो, ऐसे नहीं होता है। इसलिए उपासना जानने के लिए जो उपासना की पद्धति है उनके पास में जाना पड़ता है। ऐसे ही हमने कुछ फूल चढ़ा दिए, दुर्गा जी को दे दिया फूल ले लिया, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो एक टोकरी में फूल ले लिया और लेकर के यमुना के में स्नान किया, हनुमान जी को दिया, काली जी को दिया, दुर्गा जी को, महेश को, गणेश जी को, सरस्वती को, वहाँ पर चंडी जी हैं और नई नई देवियाँ हैं, कौन कौन सी संतोषी मैया और नजने कौन कौन सी मैया निकल आती हैं, और सबको पूजा समय करते करते 11 बजे तक बिना भूखे बिना कुछ पानी पिए घूमते 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 और सोचते हैं कि आज घर वाले भी सोचते हैं कि ये तो 12 बजे तक कुछ खाया नहीं, अभी तक पूजा करते करते किंतु हुआ क्या, उसमें कुछ तत्व नहीं उस बात है। हाँ थोड़ी सी सत्ता है कि यदि साधुओं का जमीन हम मिल जाए उपयुक्त का और उनको समझा दे के वही सत्ता बदल करके भगवान को उपासना में लग करके वो भगवान को ऐसे ऐसे ही जैसा काम ऐसे बहुत से लोग हमसे मिले और उनको धीरे 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 ऐसे लगा दिया वो परम भक्त। इसी तरह से प्रहलाद महाराज का चरित्र छोटे से 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान का भजन करना कैसे किया, नारद जी मिल गए कैसे मिल गए और कैसे उपासना की, सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे, जहां उनकी दृष्टि पड़ती थी वहीं तो भगवत दर्शन, और उनका पिता कहता था यह भगवान का क्या है, अरे भगवान को तो मनुष्यों ने बनाया, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान को हमने या लोगों ने अपनी एक भावना से भगवान को कर दिया, ये भगवान भक्ति की एक सेंटिमेंट है, मन की एक भावना, अपने कुछ सांत्वना देने के लिए हमने एक मन से बना करके शिव जी को कट लिया, भगवान को बना लिया, मनुष्य नहीं जाता चिंता नहीं करता तो भगवान नहीं होते, इसे भगवान का कोई चीज नहीं है, भक्ति कोई चीज नहीं है, खाओ पियो मत करो, ईट ड्रिंक कैंड बी मेड, और ऐसा पाप पियन पियो जाओ अपना पता से भूख करे नालियों में न गिर जाए और कुत्ते आकर के मुख न धो दे, मुंह धोना जानते हैं ना, नाली में पड़ जाएंगे तो कुत्ते आएंगे पेशाब कर देते हैं मुख पर, उनको पता नहीं, ये सब मूर्खता है। इसलिए प्रहलाद महाराज का चरित्र श्रीमान शुभानंद जी संक्षेप में तात्विक रूप में आप लोगों को श्रवण करेंगे, आपको ठीक के रूप से सुने संक्षेप में बतलाएं।
सनातन धर्म के उपदेश भगवान की आराधना नास्तिकता को कहते हैं, जिस विषय पर भगवान ने इस संसार में मनुष्यों को बनाया प्राणियों को बनाया उसमें भगवान मनुष्यों को विशेष योग्यता प्रदान की, भगवान ने हमारे लिए बुद्धि इंद्रिय शक्ति संकृत किया, उसके द्वारा मानव चेतनता का विकास करना है, न कि हम निजी और प्राणियों के स्वयं ने किया है, इसलिए कहा आखिरी भाव के द्वारा नास्तिकता के द्वारा कभी भी हम विकास नहीं बन सकते, जब हमारी बुद्धि आस्तिकता की ओर बढ़ेगी, जब हम प्रभु को आश्रय करेंगे, जब हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे तब हमारे बुद्धि निकले, इसलिए श्रीमद भागवत ने कहा भगवान ने संसार में दो प्रकार के प्राण की सृष्टि की, विष्णु पुराण में श्रीमद भागवत में श्रीमद भगवत गीता में एक ही प्रकार का संदेश, जो कि दो दूसर लोकी आती दैव आसुर विष्णु भक्त मृत दैव आसुर विपर के दो प्रकार के प्राण समाज ये देवता दूसरे असुर विष्णु भक्त स्मृतो रही, जो भगवान का भक्त है भगवान विष्णु की उपासना करता है सबको मानता है सबको लेकर के चलता,
वो तो देवता मनुष्यों में ही देवता होती है और फिर मनुष्यों में ही जाना जो कि ठीक उसके विपरीत अपना पेट सर्वस्व उधर सर्वस्व खाओ पियो मौज कर कैसे भी हो लूट मार करो लूट मार कर सब प्राणियों की हिंसा कर दो खत्म कर दो बस केवल हमें इस प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों को असुर कहा गया है। यह देव और दानव देवता और असुर केवल आगे नहीं सतयुग से लेकर के विश्व समाज में प्राणी सृष्टि ने चलाया और इन्हीं का संघर्ष हमेशा रहा है और आज भी है। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें यह संदेश दिलाती है कि हमेशा हम नास्तिकता की ओर न जा करके भगवत भक्ति की ओर देव प्रेमी में हमें प्रवेश करना। गीता में भी भगवान ने कहा है अर्जुन नमाम सुकृति नो मूढ़ प्रवर्तन से नराधमा माया पर हितक ज्ञान आश्रम भाव मात्र नमाम सुकृति नो मूढ़ दुष्कर्मकारी दुष्कृति बढ़ाए ऐसे व्यक्ति संसार में बेलो कौन है क्योंकि मूढ़ पशुतुल्य कर्मी केवल खाना पीना भोग मिला दिन रात कर्म करना बस दिन भर वक्त लौटे आया सोया बात कुछ पता ही नहीं आत्म अनुभूति आत्मचिंतन पूर्ववन का चिंतन करना कुछ भजन साधन करना अपने जीवन का कुछ कर्तव्य तो सब इससे हो गया उनके जीवन में कुछ इसलिए ऐसे मूढ़ और विचार नराधमा मनुष्य जीवन मिला पढ़ लिख करके विकास के और बढ़ते हुए कुछ विकसित हुआ मानवता आई पर ऐसे क्षेत्र में ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां सारी मानवता को समाप्त कर दी ऐसे गलत संयम में गलत प्रभावियों में दूसरों के साथ में असल संयम में पड़ गया जीवन को नाश कर नराधमा ऐसे व्यक्ति नराधम है जो कि भगवत का भजन नहीं करते न उनको कोई मौत है चेतना माया अपने तक ज्ञान माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान लुप्त हो गया कि यही धन दौलत खाना पीना भोग मिला यही घर यही विशेष संपत्ति इसी को पा करके हम जीवन भर सुखी हो जाएंगे और चिर शांति चिर सुख को कायम करेंगे किसी के लिए पड़े थी इसलिए माया अपरिहार्य आश्रम भाव मात्र बहुत से लोग हैं जो कि आश्रमी भाव के हैं उनको क्या है कि भगवान कहीं हो तो उनको मिटा दिया जाए कि भगवान को भगवान की शक्ति को हरण कर दिया जाए ऐसे भी समाज में बहुत से लोग किए हैं। अभी आपने श्रवण किया रावण कुंभ कर्ण कंस जलाकुंभ फिर नक्ष हिरण्य कछुआ आदि धीरे जिन लोगों ने भगवान को मिटाना चाहा हिरण्य कछुप ऐसे ही थे जिसने कहा अरे भगवान विष्णु कौन है वह आएगा तो मैं उसे बात करूंगा इसलिए सभी रिश्तेदारों से कहा जा सारी प्रजाओं को विनष्ट कर डालो गायों को काट दो जो कि एक भी गाय नहीं बचेगी और दूध भी नहीं मिलेगा घी नहीं मिलेगी और घी के बिना आहुति भवन भी नहीं हो पाए और ब्राह्मणों को खत्म कर दो समाप्त कर दो खान जितने हैं जितने खनिज संपदा हैं सबको समाप्त कर दो और प्रजाओं में प्राण प्राण मचे सब जगह आ गया और हिरण्य कश्यप विष्णु को मारने के लिए कि मैं विष्णु को मारता हूं आएगा भी तो हमारे सामने तो कोई उदाहरण करके आएगा इसलिए जब निर्बल हो जाए दुर्बल हो जाए ये दुष्टों के कुछ और हिरण्य कश्यप ने उपासना की ऐसी उपासना जो साधारण किसी मानव के लिए संभव नहीं 7000 वर्ष पर बिना खाए पिए मंगलाचल पर्वत में जाकर के तपस्या है जिसके शरीर पर दिमक का ढेर हो गया पेड़ पौधों से जंगल भर गया ब्रह्मा के आए वरदान देने के लिए पता नहीं चला कि कहां पर तपस्या कर रहा है मंत्र को पानी से जब गिर गया उसमें से सिर्फ तेज धारण करके हिरण्य कश्यप बाहर आया उसे कहा हिरण्य कश्यप तुमने ऐसे सब किया कि न भूतों न भविष्यति, संसार में ऐसे न किसने किया और न कोई कर सकता है।
तुम बस बाबू सोचा,
तब हिरण्य कश्यपु ने सोचा कि मैं ऐसा वर मानू कि जिससे मैं मरू नहीं पर भगवान विष्णु को वाचक, यही उसका अभिप्राय था। इसलिए हिरण्य कश्यपु ने कहा कि प्रभु हमें वर देना है तो अमर वर दीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि मानव देह में कोई अमर नहीं होता है, ये पांच वर्ष शरीर है ये चला जाता है,
इसलिए तुम दूसरा वर मानो।
उसने सोचा अच्छा ब्रह्मा जी भी हमसे चतुराई करे, नहीं देना चाहते
हम तो ऐसे ही वर मानेंगे जिससे कि मृत्यु का हम जीत लें। दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर में, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, किसी अर्थशास्त्र से नहीं और किसी विचारी के द्वारा हमारे मृत्यु न हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कितने ही दौड़ लगाओ, बुद्धि की दौड़ जितना ही लगाओ भगवान की बुद्धि और भी पड़े
तथा कुछ नहीं।
उसने सोचा हमने तो अमर हो गया, अब तो कोई चिंता है और अपूर्व ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त किए,
वरदान से सब कुछ मिल गया।
घर में लौटे तो देवराज इंद्र का सिंहासन गिर लिया, फिर लिया, सारे देवताओं को अपने नौकर बना दिए, सबको काम लगा दिए और स्वयं अजिंद्रिय होकर के विषय भोग में डूबे रहे। वन उपवन में विहार करने लगे, स्त्रियों के साथ भोगों में पड़ा रहा, यही उसका काम। सोचा कि वह इस शरीर के द्वारा विषय भोग करना ही जीवन का सार है, अब तो अमर बन गया कौन मार सकता है। जैसे जरासंध ने सोचा था माधव का राजा, माधव जब का राजा था जरासंध, उसने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं सिद्ध की आराधना करता हूं तो महामृत्युंजय कवच के द्वारा मैं अमर बन जाऊंगा। और सिया की राजाओं को उन्होंने बंदी बना दिया कि और चौदह हो जाए कि एक राजाओं को मैं सिद्धि के सामने बने देखूंगा तो उससे मैं अमर बन जाऊंगा।
भगवान कृष्ण ने कहा कि सबसे दान मांगे,
बोले कि आप युद्ध दान मांग रहे हैं क्या बात, किस लिए? भगवान कृष्ण ने कहा
जरा
अधर्म लीला के ऊपर खड़े हो करके तुम धर्म की ध्वजा उड़ा रहे हैं, अधर्म के द्वारा कभी धर्म नहीं होता है, राज्य की हिंसा करते हुए कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए इस बात को सोच अन्याय के द्वारा कभी न्याय नहीं होता है न कभी धर्म होता है।
हिरण्य कश्यपु ने वही
पर उन्हीं का पुत्र था
प्रहलाद,
जो छोटा सा बालक माता के पेट में रहते ही नारद जी उन्हें मिले, जबकि देवराज इंद्र उनके माता को हरण करके ले जा रहे थे कि उनका जन्म होते ही उनको माता।
नारद जी ने कहा
अरे तुम क्या संसार का कोई विवेक इसे मार नहीं सकता, इसको महाभारत बोलते हैं, इसे छोड़
छोड़ दिया। देवराज इंद्र तो पूरे क्षमा करके प्रणाम करके चले,
तो उनकी माता शरण लेकर के नारद जी के पास रही तो नारद जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई और माता के पेट में रहते हुए प्रहलाद जी ने जो सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली और वहीं से प्रभु का स्मरण करता रहा।
जन्म होने पर छोटा सा बालक
जब बड़ा हुआ कि इतने में पिताजी ने उन्हें शुक्राचार्य के पुत्र संदावास के पास पढ़ने को भेज दिया, पूरा जाकर के पढ़ते लिखते हुए सुनने में लौटा, पिताजी के पास में आया तो
उन्होंने गोदी में उठाया,
बोले कि बालक प्रहलाद तुमने जो मुझे अक्सर लिखा है उसमें से कुछ सुना दो। उनके मन में धन में चिंतन में क्या था,
प्रभु भक्ति प्रभु की आराधना
और हमारे गुरु नारद जी हैं जिन्होंने जो हमें सत्य बदल दिया यही जीवन का था, इसलिए उन्होंने सही बात कह दी। संसार मन में सुरवाई देखा हे अर्जुन श्रेष्ठ हे पिताजी, मैं खुशी को साधूंगा जो लोग इस संसार में आए हुए भौतिकता की ओर बढ़ के लिए केवल खाने पीने भोग विलास में वो सदा ही दुखी आतुर है, सुख दुख लाभ लाभ जय पराजय मान अपमान जय सब जस में पड़े हुए कामुक नहीं है, इसलिए शांति का पास एकमात्र सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर प्रभु का भजन करना श्रीहरि का भजन करना, इससे बढ़कर जो अद्भुत। इतने में श्री नरसिंह को हंसते हुए संता वर्ग को बुलाया, बोले क्या बात है, ये बालक कैसे ऐसे बोल रहा है? बोले प्रभु हमने तो सिखाया है, पता नहीं कैसे बोल रहा है। बोले कि अच्छा, अब की बार चारों ओर से बाहरदारी लगाओ कि कोई भी व्यक्ति इसे न समझा सके न पढ़ा सके। ठीक है, ऐसे ही हुआ। दूसरे बार जब पढ़ लिख करके आया तो मित्र ने पूछा, कुछ उत्तम विद्या सिखाओ हमें, बता। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रवरंत कीर्तनम विष्णु स्मरणम निष्कमल रूप से भगवान विष्णु के चौड़ों में तारा हो जाए, अपना आपको सर्वस्व प्रभु के चौड़ों में समर्पण कर ले, और प्रभु की जो भक्ति है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्जन बंधन दक्ष सख आत्मनिवेदन, ये नौ प्रकार की भक्ति क्रिया यही जीवन का सार है। प्रभु के नामों का कीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण हो, उनकी पूजा अर्चना करें, अपना सर्वस्व समर्पण कर ले, निष्कपट रूप से उनके चरणों में आश्रित हो जाए, यही जीवन का सार है, यही सबसे उत्तम निद्रा। अब हिरण्यकश्यप को रहा नहीं गया, तब फिर से गुरु को बुलाया संदावर को, बोले ये कैसे बोल रहा है, ऐसे आपने सिखाया? तो हाथ जोड़े कांपते रहे, बोले प्रभु हे महाराज, आप इस बालक को पूछिए क्या हमने सिखाया या और नहीं है, हमने तो नहीं सिखाया, ये जहां से सीखा है वो उनसे बता। देखने में उसके पिताजी ने कहा, अरे बाबे तुम्हारी ये अपने बुद्धि कहां से ऐसी बात कर रहा है? बोल। इतने में बालक ने कहा, फकीर नृत्य परत विष्णु विपत्ते गृह प्रदा, ये लोग कहां से हमें सिखाएंगे, हमारे रूप से तो चुप की तरह भगवान में छिपी हुई, हमारे प्रभु में लगी हुई, न ये लोग सिखा सकते हैं न दूसरे। ऐसे संसार के लोग जो अधिकतर प्रिय है विष्णुओं में बड़े सफे होंगे, अपने घर को छोटा बना लिया और उसी के चारों ओर घूम रहे हैं कि इस घर की उन्नति कैसे, संसार की उन्नति अपने सुख संपदा को हम कैसे प्राप्त करें, इस मोहजाल में फंसे अजित्री होकर के विषयों को भोग रहे हैं और पुनः पुनः रोज भी ऐसी चीजों को भोग रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, यही तो काम है। तब ऐसी व्यक्तियों को हजारों लोग उपदेश हैं, अपने तरफ से चाहे कितना ही सोचे कभी भी भगवान में चित्त नहीं लगता है न लग सकता, लगने का उपाय एकमात्र संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित हो जाए और अपने जीवन को लोछावर कर ले, तब कहीं बुद्धि भगवान में लग सकती है। अन्यथा जो लोग भक्ति संपदा को अर्थ को अपने जीवन का पुरुषार्थ मान लिया और इसी में फंसे हुए हैं, राय भले अंधकार में डूबा हुआ है, काला बादल छाया हुआ है, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को पकड़ करके चलता है, इसी प्रकार संसार जगत में गिरा हुआ व्यक्ति कैसे निकल सकता है? निकलने का उपाय एक मात्र संत महापुरुषों का चरण कम आश्रय करे जब हो सकता है, इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। इन बातों को सुन करके हिरण्य कश्यप को रहा नहीं गया, सब अंधों को बुलाया कि इसे अभी मारे खत्म करो, समाप्त करो, जितने भी रिश्तेदारों से सब जने टूट पड़े, शस्त्र शस्त्र लेकर के मारे, परंतु प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, जो प्रभु का नाम लेते भगवान का स्मरण करते हैं वे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं, आकाश पहाड़ के ऊपर से गिराए, गले में पत्थर बांध करके पानी में फेंक दिए, बात के सामने छोड़ दिया, सांपों के सामने छोड़ दिया, पर किसी ने कुछ नहीं किया, यहां तक कि आज में फेंक दिया। हिरण्यकश्यप की वाहन फलिका जिसको वरदान मिला हुआ था कि कभी आग में नहीं जलेगी, हिरण्यकश्यप ने कहा, वाहन तुम इस प्रहलाद को नहीं करके आग में चले जाओ, आग में जल करके खत्म हो जाएगा, तब तुम चला। बात नहीं, फलिका गई जैसे आज मैं सूर्य निर्वात को देख सकते, इतने में अभी वरदान अभिशाप में बदल गया कि आर्य जो थी जो अभिशाप से मिला हुआ था, ये वरदान मिला हुआ था होली का तो जला करके राज किया, पर आज विफल हो गई प्रहलाद जैसे के वैसे नहीं। इसलिए धर्म का शब्द का हमेशा भी यह रहा, कभी भी सनातन धर्म विनष्ट नहीं हुआ। सनातन धर्म को पालन करने वाले ऐसे जो भक्त जन उनका कभी भी विनाश नहीं होता, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, पशु लोग चाहे कुछ भी कर दे, स्वयं भी खबर विभिन्न स्थिति पर खबर अपनी दुष्टता के कारण स्वयं ही विनाश प्राप्त होता है। से परेशान हो गया, किसी भी तरह से प्रहलाद को कुछ भी बिगाड़ नहीं। यहां तक कि उसके गुरु संडा बनकर आए और प्रहलाद को लेकर के गए पिताजी से, हिरण्यकश्यप से कहा कि आप इस बालक को दे दीजिए और कुछ दिन हम पढ़ाए बड़े बड़े पर जरूर कुछ मदद
करें पिताजी। यहाँ पर
तो इस प्रकार हमारे पिताजी भी आ जाएंगे, समझा देंगे, सब ये बदल जाएगा, ऐसा कहेंगे।